आठवां अध्याय श्लोक संख्या 18। एषः असौ अहम् अव्यपृष्ठे एतत् कुतः वा अब्जम् अनन्यत् अप्सु अस्ति हि अघस्तात् इह किञ्चन एतत् अधिष्ठितम् यत्र सता नु भाव्यम् या एष यासो असुहमाब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति हि अगस्तात् इह किञ्चनैतत् दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् का एष यो वा सोऽहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति अगस्तात् किञ्चनेतत् दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् का एष यो वा वसोऽहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति अगस्तादिह किञ्चनैत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यम् माता जी शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कह कौन एषः यह या असौ अहम् जो मैं हूं। अब जपृष्ठे कमल के ऊपर एतत् यह कुतः कहां से वा अथवा अब्जम कमल का फूल अनन्यत अन्यथा अप्सु जल में अस्ति है ही निश्चय ही अघस्तात नीचे से इह इसमें किंचन कुछ भी एतत् यह अधिष्ठितम स्थित यत्र जिसमें सता स्वतः नु या नहीं भाव्यम होना चाहिए। अनुवाद। अपने अज्ञानवश ब्रह्मा ने विचार किया इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, यह कमल कहां से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे अनुवाद। अपने अज्ञानवश ब्रह्मा ने विचार किया इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, यह कमल कहां से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तात्पर्य, प्रारंभ में विराट जगत की सृष्टि के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसा का तैसा बना हुआ है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का यत्न करता है। यदि तपस्या और अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। ओम अज्ञानात् मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजादं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरित्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भगवत कक्षा में। धन्यवाद। तो ये अध्याय का नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो इस प्रसंग में बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि के पहले जीव विधाता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और गर्भोदक्षाई विष्णु जी के उदर से एक कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी स्थित हैं। और पिछले श्लोक में बताया कि उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ने ना तो सृष्टि को ना कमल को ना ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय की जो वायु थी जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों से हिलाने लगे। तो आप कल्पना कीजिए कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और कोई नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कमल का फूल निकला, कमल के फूल पे अपने आप को देख रहे हैं और वो कमल का फूल ये नहीं कि चुपचाप सीधा खड़ा हुआ है। जो प्रलय के समय की वायु है जोर जोर से कमल को हिला रही है और पानी में बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही हैं। बहुत ही भयावह वातावरण है। तो ऐसे भयावह वातावरण में ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो एक युग तक ब्रह्मा जी परेशान रहे कि क्या हो रहा है। एक युग कुछ छोटा समय नहीं है, एक युग तक ब्रह्मा जी परेशान रहे कि क्या हो रहा है। वो बार बार कमल की नाल के नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि क्या है, कमल का फूल क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो समझ सकते हैं कितने परेशान हुए होंगे ब्रह्मा जी। और आज के श्लोक में है कायेश, कौन है ये, कौन है असो हम और मैं कौन हूं। अब जो पृष्ठ है जो एक कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ हूं, एतत कुता, ये कहां से आ गया, कहां से आ गया ये एतत कुता वा अब्जम अनन्यत, ये कमल का फूल है या कुछ और भी है, कहां से आया हूं मैं, ये कौन हूं, क्या हो रहा है। अस्ति अस्ति ही अघस्तात् किंचन एतत् अधिष्ठितम्, कि निश्चय ही अस्ति ही निश्चय ही अघस्तात्, ये नीचे से निकला है फूल है? और किंचन कुछ और भी होगा जिसके ऊपर ये स्थित है, और जहां से निकला है वो कहां है, कुछ ना कुछ जहां से निकला वो भी कुछ होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि अज्ञानवश ब्रह्मा ने विचार किया कि इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं, ये कमल कहां से फूट कर निकला है, इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, जिससे है कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तो पहले ही वाक्य में श्री प्रभुपाद ने अनुवाद किया है अज्ञानवश। तो ब्रह्मा जी जो कि वेदोमयी हैं, विधाता हैं, वो अज्ञान में हैं और उनको नहीं मालूम कि उनकी रचना क्यों की गई और किस लिए की गई। वास्तव में ये पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है ये अज्ञान में है, अंधकार में है। अज्ञानता का अर्थ है अंधकार और अंधकारता का अर्थ है दुख। तभी भगवान ने गीता में इसको बताया है दुखालय। तो पूरा का पूरा भौतिक जगत अंधकार में है, ये इसकी वास्तविक स्थिति है, और आध्यात्मिक जगत प्रकाशमय है। और तभी वेदों में बताया गया तमसो मैं ज्योति गमा, हमें इस अंधकार से प्रकाश की तरफ निकलना है। तो अब देखिए कि ब्रह्मा जी जिनकी उत्पत्ति कमल के फूल के ऊपर हुई और जो स्वयं गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर से निकले, वो अज्ञान में है, तो हम सबकी क्या स्थिति होगी। हमें से कोई भी कमल के फूल के ऊपर नहीं निकलता, हमारा जन्म होता है खून से लथपथ, नंगे रोते चिल्लाते हुए हम पैदे होते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी और हम कोई गर्भोदक्षाय विष्णु के उदर से प्रकट नहीं होते, माँ के गर्भ में तरह तरह के कष्ट सहते हैं, उसके बाद हम किसी ढंग से बाहर आते हैं रोते हुए। तो ब्रह्मा जी देखिए इस सृष्टि के पहले जीव हैं, वेदों में उनको पिछले श्लोक में बताया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से अज्ञानता में है, पूर्ण रूप से वो अज्ञानता में है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा भौतिक जगत अज्ञानता में है, क्योंकि भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान जी ने उद्धव को ज्ञान की परिभाषा दी है। ज्ञानम तु एकात्म दर्शनम, ज्ञान का अर्थ है कि हम हर जगह कृष्ण को देख सकें, और जब तक हम हर वस्तु में कृष्ण को नहीं देखेंगे हम अज्ञानता में हैं। तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। और आप देखिए कि संसार की ये भौतिक जगत की जो जड़ विद्या है ये हमारी अज्ञानता को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी क्या कहते हैं कि जड़ विद्या हम सबको गधा बना रही है। हम लोग इस संसार में कोई जितना ज्यादा भौतिक दृष्टि से योग्य है, लोग उसके बड़ा गुणगान कर रहे हैं, उसको नोबल पुरस्कार दे रहे हैं, वो उतना ही बड़ा गधा है अगर वो कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ, वो उतने बड़े अज्ञानता में है। भक्ति सांस ठाकुर महाराज कहते हैं कि इस जो आधुनिक ज्ञान है इसका सबसे जो मुख्य इसका दोष है कि इसका परम सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक है, परम सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो पदार्थ है ये अपने आप में स्वतंत्र है, और जो चेतना विकसित होती है ये कुछ रसायनों से चेतना विकसित हो रही है, तो इसका सत्य से भगवान से कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी। तो कितना बड़ा भ्रम है, जिस अज्ञान का आधार ही यही है। क्या आधार है? एक बिंदु एक बिंदु है, उसी से सारी सृष्टि की रचना हुई है। जिसका आधार ही इतना काल्पनिक है, उसके वो ज्ञान को हम अर्जन करके बड़े बड़े नोबल पुरस्कार क्यों ना जीत लें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक गधा जो जो गधों का समाज है, शुक्रों का समाज है, एक पशु का ही गुणगान करेगा, तो उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब अज्ञानता में है। ज्ञान का अर्थ ये है कि हम हर वस्तु में, संसार की हर वस्तु में कृष्ण की उपस्थिति को देखें, तब हम ज्ञानवान कहलाएंगे। तो इस सृष्टि के पहले जीव भी अज्ञानता में है, ये पूरा भौतिक जगत अंधकार में अज्ञानता में है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम के तात्पर्य में कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ, श्री राधा प्रसादी जी की जय, श्री गौ निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। दिस होल मटेरियल क्रिएशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एनर्जीज इमेजिनेशन एंड एक्सटर्नल पोटेंसी। ये पूरा पूरा जो भौतिक जगत है सृष्टि,
ये जीव की काल्पनिक शक्ति और भगवान की मायावी शक्ति के मिश्रण का प्रतीक है। बस केवल कल्पनाओं पे कि ये अगर हम ऐसे ये चीज मुझे प्राप्त हो गई तो मुझे सुख मिलेगा, कल्पनाएं, तो ये भ्रम है। और जो आज का विज्ञान है, जो ज्ञान है, वो इस भ्रम को और बढ़ाता जा रहा है। हमें झूठे आश्वासन मिलते हैं कि हम जल्दी ही सुखी हो जाएंगे। तो पहले जीव जब ब्रह्मा जी ही अज्ञानता में है तो हम सबको मानने में कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इस संसार का प्रत्येक जीव अगर वो कृष्ण की अनन्य भक्ति में नहीं लगा तो पूर्ण रूप से वो अज्ञानता में है, चाहे भौतिक दृष्टि से उसका कुछ भी स्टेटस स्तर क्यों ना हो। और जब वो अज्ञानता में उन्होंने इस कमल की नाल के पीछे बार बार वो ऊपर नीचे हुए, तो एक कमल की जो नाल है जो कि गर्भोदक्षा विष्णु जी की नाभि से निकला है, वो कमल की नाल इस 14 लोकों को दिखाता है। तो बार बार 14 लोकों में ब्रह्मा जी ने भ्रमण किया लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा। और कितने समय तक किया ये? एक युग तक। पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है कि वो एक युग हमारे 100 वर्षों की गणना से परे है, हम उसको गिन भी नहीं सकते कितना लंबा समय वो। तो एक युग तक ब्रह्मा जी ये तड़पते रहे, क्या हो रहा है ये, कहां हूं मैं, और तेज तेज हवाएं उनको हिला रही है, कमल का फूल हिल रहा है जोर जोर से, प्रलय की हवाएं, प्रलय, ये कोई साधारण हवाएं नहीं है, प्रलय की हवाएं जोर जोर से पान कमल के फूल को हिला रही हैं। और एक युग तक ब्रह्मा जी को ये कष्ट सहना पड़ा। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कहां से आया हूं मैं, क्या हूं, किसने मेरी उत्पत्ति की। तो इसको बोलते हैं, इस जिज्ञासा को जब उन्होंने किया, और फिर अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि फिर वो दोबारा से कमल के फूल के ऊपर आए और 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना की। तब वो सोचे कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि ये कृष्ण ही है सब कारणों के कारण। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा कहलाती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, इस सृष्टि क्या है, मेरा इस सृष्टि से क्या संबंध है, भगवान कौन है। तो ये कहलाती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि वेदांत पहला वेदांत सूत्र है। जो ब्रह्मा जी की हालत हुई कि वो भटक रहे थे इधर उधर इस सृष्टि की रचना का कारण जानने के लिए और वो दुखी थे, यही इस संसार में प्रत्येक जीव की हालत है। अज्ञानता वश, अज्ञानता का अर्थ है कि हम पाप करेंगे, पाप का अर्थ है कि हमें दुख प्राप्त होगा ही होगा। तो हर जीव इस संसार में दुखी है लेकिन वो दुखों के कारण को समझ नहीं पा रहा कि दुख के कारण क्यों मिल रहे हैं। और वो व्यक्ति अपने आप से अवश्य प्रश्न पूछते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, सब कुछ है मेरे पास, सारे भौतिक सुख समाधान है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। तो जब वो प्रश्न पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूं, ये निर्भर करता है कि आप प्रश्न किससे पूछ रहे हो। मैं दुखी क्यों हूं, ये प्रश्न अगर आप किसी ज्योतिष के पास चलाएंगे, बोले राहु केतु का चक्कर है और कोई समस्या नहीं है, शनि भारी है, तो उस जंजाल में फंस जाएंगे। फिर किसी वैज्ञानिक के पास जाएगा कि मैं दुखी क्यों हूं, तो वो आपको नया कोई आविष्कार पकड़ा देगा अपना। किसी फिलोसफर के पास जाओगे और बोलोगे मैं दुखी क्यों हूं, वो अपनी कोई फिलोसफी सुना देगा। लेकिन जब तक यही प्रश्न हम एक भगवान के प्रमाणिक भक्त से नहीं पूछेंगे, हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। और यही कहलाती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रील वेदव्यास जी ने ये वेदांत सूत्र की रचना कब की, बताया जाए संसार में जितने भी हम सब जीव भगवान से विमुख होकर आए हैं, तो माया मुग्ध जीव नहीं सोते कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेदों की रचना की, तो वेदों की रचना कर दी। उसके बाद स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। लेकिन वेदांत सूत्र की उन्होंने रचना की उन जीवों के लिए जो कि इन भौतिक दुखों से पूर्ण रूप से कुंठित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से कुंठित होकर वो जानना चाहेंगे कि वास्तव में सृष्टि की रचना का मुख्य कारण क्या है और मुझे सृष्टि में आकर क्या करना है। उन्हीं जीवों के लिए वेदव्यास जी ने ये वेदांत सूत्र की रचना की। अब इस संसार में मनुष्य देह में ही अधिकतर जीव तो ऐसे हैं जिनको बोला जाए कि संसार दुखाले हैं तो हंसी उड़ाते हैं, बोले कहां दुखाले, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बीमार हो गए तो क्या समस्या है, डॉक्टर के पास चले जाओ। मर गए तो क्या हुआ, सब मर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। जब तक जितना आप इंजॉय कर सकते हो करो, भोग विलास करो, तो हिम्मत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक दिन कामयाब हो जाओगे, आप इतने निराश मत हो, आशावादी बनो। तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि संसार में दुख है। तो इनको बोला गया है ये शूकर समान व्यक्ति हैं। एक जो सुअर जो मल के रस का आस्वादन कर रहा है, हम जानते हैं कि इसकी कितनी दयनीय स्थिति है, लेकिन शूकर को कोई पूर्ण रूप से आनंद में है। तो ऐसे लोगों को संसार दुखाले नहीं लग रहा। और एक दूसरा स्तर है परम हंसों का, जो कि संसार के सुख दुख से बिल्कुल परे हैं, वो हमेशा कृष्ण के स्मरण में लीन है, तो उनको भी संसार दुखाले नहीं लग रहा। लेकिन जो बीच के जीव हैं, ना जो शूकर है ना परम हंस हैं, जो कि अधिकांश हम सब जीव, ये दुखों को अनुभव करते हैं कि हम दुखी हैं, ना हमें इंद्र तृप्ति में रुचि मिल रही है, ना हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पे हैं, तो दुखों का बहुत अनुभव होता है। तो ऐसे जीवों के लिए वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्रों का संकलन किया। वेदांत सूत्र में चार अध्याय हैं और इन चार अध्याय के चार पाद हैं, चार डिविजन्स हैं, इसलिए वेदांत सूत्र बोलता है षोडश पाद, 16 इसके पाद हैं। और इन 16 पादों के जो मुख्य सार को समझाया गया है पांच भागों में, वो पांच भाग होते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। तो प्रतिज्ञा यानी कि जो प्रतिज्ञा है कि अब मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है, ये प्रतिज्ञा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि पहला ही वेदांत सूत्र है। फिर सब 16 के 16 भागों में हेतु कारण बताया गया कि ये जिज्ञासा क्यों करनी है, फिर उदाहरण दिए गए हैं, और फिर उपनयन इस ढंग की विधियां बताई गई हैं जिससे हम अपने इस लक्ष्य के समीप पहुंचेंगे, और फिर निगमन अलग अलग वैदिक शास्त्रों से शास्त्रों की बातों के द्वारा समझाया गया है कि जिज्ञासा करना क्यों आवश्यक है। तो मूल जो प्रथम वेदांत सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो मतलब कि अब ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो आप ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। तो किसको बात बताई जा रही है, किसको बात बताई जा रही है, हम सबको। हम बोलेंगे बद जीवात्मा, तो कोई है बद जीवात्मा, मुझे क्या लेना देना। तो शास्त्रों को जब हम पढ़ें तो उनको अपने साथ रिलेट करना चाहिए, है ना। हम तो जब से हम इस कौन में आए हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हम बोलते ही रहते हैं, खूब प्रचार करते हैं, खूब बोलते हैं, आज जाने का प्रयास करेंगे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होती क्या है और क्या हम वास्तव में कर रहे हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो भाई, अब तो करो जिज्ञासा, किसके विषय में, ब्रह्म के विषय में, अब तो करो। अब शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली है जो बता रहा है कि बहुत अर्जेंट, बहुत समय व्यर्थ गवा दिया, बहुत जीवन बिता दिए, बहुत युगों युगों तक आप यहां पे जैसे ब्रह्मा जी की तरह आप भटक रहे, ब्रह्मा जी भटक रहे थे नाल में, हम भी भटक रहे हैं कई कई ब्रह्मांडों में, अब तो करो, अब समय आ गया है, वो समय आ गया, अब तो करो। कई योनियों में भटक लिए, पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ की, जलचर की, तरह तरह की योनियों में भटक गए, तब ये जिज्ञासा नहीं कर सकते थे। जिज्ञासा तो हर जीव कर रहा है, क्योंकि हम सब सच्चित आनंद हैं, चित ज्ञान में है, लेकिन भौतिक जगत में अज्ञानता में आ गए हैं, तो ज्ञान को तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो हर जीव यहां जिज्ञासा तो कर ही रहा है, लेकिन वो जिज्ञासा ब्रह्म की नहीं, भ्रम की है। प्रत्येक जीव जो निम्न योनियों में भी है, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रम की जिज्ञासा कर रहे हैं। भ्रम की जिज्ञासा यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो सुबह सुबह हम उठते हैं, चींटियों की आपस में आवाज, तो चींटी एक दूसरे, सॉरी, चिड़ियाओं की आवाज, तो एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को क्या बता रही है कि यहां दाना है, यहां पे आ जाओ, यहां घोंसला है, यहां आ जाओ, यहां मैथुन करेंगे, यहां सोएंगे, एक दूसरे को यही कम्युनिकेट कर रहे हैं, है? जो कुत्ते आपस में भोंग भोंग के बता रहे हैं, वो यही तो बता रहे हैं कि वहां पे एक मादा कुत्ता है, वहां जाके मैथुन करो, यहां हड्डी पड़ी है, यहां खा लो, यहां मत सोना, ये मेरे सोने की जगह है, खबरदार जो मेरे एरिया में आए बाहर निकल जाओ यहां से। तो वे सब आपस में जिज्ञासा ही तो कर रहे हैं, कुत्ते भी आपस में जिज्ञासा कर रहे हैं, चिड़िया भी आपस में जिज्ञासा कर रहे हैं, सब जीव जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये सारी जिज्ञासा करते 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 हमें सुख नहीं मिला, और भगवान की विशेष कृपा से हमें ये उपहार दे दिया गया, ये मनुष्य देह भगवान के द्वारा दिया विशेष उपहार है, और इस उपहार को प्राप्त करने के बाद अब हमें जिज्ञासा करनी है, वेद व्यास बता रहे अब वो समय आ गया, अब जिज्ञासा कर सकते हो, भ्रम की नहीं ब्रह्म की, अब कृपया करके जिज्ञासा करो, बहुत देरी हो गई है, अब करो जिज्ञासा। और अब आपको ये मनुष्य देह जो कि बहुत दुर्लभ है कहां पे मिला है, भारतवर्ष में, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवतागण पूजा कर रहे हैं। वो देवतागण सर्वलोकों में कैसे पहुंचे, बड़ी बड़ी तपस्याएं करके, बड़े बड़े यज्ञ करके, और वो कह रहे हैं कि सारे के सारे पुण्य ले लो भगवान, नहीं चाहिए हमें ये, सारे के सारे पुण्य ले लो और हमें ये फल दे दो कि भारत भूमि में मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, ताकि हम क्या कर सके, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तब हम कर सके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अति आवश्यक है। तो आप बोलेंगे या हमसे कई लोग भक्त सोच रहे होंगे कि ये हमें जिज्ञासा तो कर चुके हैं, हम तो ये जिज्ञासा कर चुके हैं, हमें मालूम चल गया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, हो गया सब कुछ, और क्या करना है इसके बाद। हम ओम शब्दात अनामृति, जो आखिरी वेदांत सूत्र है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। तो ये तो बहुत पहला वेदांत सूत्र है, ये तो बिगनर्स के लिए है, अब तो होगी हमारी जिज्ञासा, नहीं ये जिज्ञासा नहीं हुई, क्योंकि वास्तव में भ्रम क्या है, वदंती तत्विदस तत्वम यज्ञानम अद अव्ययम, भ्रमेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भ्रम को हम तीन अवस्थाओं में जान सकते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो परम जो पूर्ण अवस्था है कृष्ण, यानी कि अथा तो कृष्ण जिज्ञासा, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करो, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा अति आवश्यक है। ब्रह्मारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि नाचा अवेदिन महतिम विनिष्ठा, अगर आपने कृष्ण को नहीं जाना, नाचा अवेदिन महतिम विनिष्ठा, बहुत बड़ा विनाश होगा, महतिम विनिष्ठा, बहुत बड़ा विनाश होगा। क्या विनाश होगा, भगवान गीता में बता रहे हैं, अप्राप्य मम निवर्तन्ति मृत्यु संसार वर्तमाने, मुझे वो कभी प्राप्त नहीं करेंगे और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे, निम्न योनियों में जाएंगे। महतिम विनिष्ठा नाचा अवेदित, और अगर जान जाओगे तो क्या होगा, याते विदुर अमृतायते भवन्ति, और अगर मुझे आप जान जाओगे, ब्रह्म को जान जाओगे, तो निश्चित रूप से अमृतायते भवन्ति, आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, और यही अमृतत्व को प्राप्त करना हमारा वास्तविक स्थिति है, यह हमारी वास्तविक स्थिति है। श्वेताक्षर उपनिषद में बताया गया है, श्रवंती विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत के पुत्र हैं, आय धामानी दिव्यानी तुष्टुम, अरे तुम तो दिव्य धाम के निवासी हो, तुम यहां दिल्ली के हेली स्मेली दिल्ली, यहां संत नगर पंजाबी बाग के निवासी नहीं हो, आय धामानी दिव्यानी तुष्टुम, दिव्य धाम के आप निवासी हो, यहां क्या कर रहे हो, बार बार मर रहे हो, बार बार पैदा हो रहे हो, बीमारी बुढ़ापा क्यों उसमें पड़े हो, चलो ऊपर और करो ब्रह्म जिज्ञासा। तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, यानी कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना। और मनुष्यता, मनुष्य जीवन तभी प्रारंभ होता है जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य देह केवल ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही मिला है। इसका अर्थ हुआ कि इस मनुष्य देह का प्रत्येक गतिविधि ब्रह्म जिज्ञासा के रूप में होनी चाहिए, यानी कि हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्षण हमें इस ढंग से व्यतीत करना चाहिए कि हम कृष्ण की ओर प्रगति करें। इस मनुष्य देह का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान ने यह मनुष्य देह डिजाइन किया है केवल इसी के लिए कि ये ब्रह्म जिज्ञासा करें, मेरे प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाएं। प्रत्येक क्षण हमें इस ढंग से बिताना है कि क्या ये क्षण जो मैंने व्यतीत किया, जो मैंने कार्य किया, इस कार्य से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्या इस कार्य के द्वारा मैं कृष्ण के समीप जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं। न्यूट्रल तो हम रह ही नहीं सकते, ना ही कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्मकृत, किसी भी क्षण हम बिना कार्य किए तो रह नहीं सकते, और कार्य का फल अवश्य मिलेगा, या तो हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, और यह मनुष्य देह मिला है आगे बढ़ने के लिए। तो एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि किस ढंग से हम भगवान की सेवा में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है हम कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करें। जो केवल भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाना जाते हैं, वो कुछ समय रहेंगे फिर पतंती अधा, नीचे गिर जाएंगे, उनका आकर्षण नहीं बढ़ेगा, बड़े बड़े योगी जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने योग के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक भक्त योगी है जो कि कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, और वो हमारी वास्तविक स्थिति है, वो हमारी वास्तविक स्थिति है। हम सब जानते हैं जीवेर स्वरूपे होवे नित्य कृष्ण दास। अब ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? केवल यही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अरे भाई, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानना है, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना है। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है, यानी कि कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है? हम बोलते हैं कि मनुष्य देह मिला है भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, कह तो दिया लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है कि कृष्ण के साथ आपको संबंध पुनः स्थापित करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, और दोनों में किस तरह का रसास्वादन हो रहा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवद्गीता की भूमिका के दूसरे ही पृष्ठ में प्रभुपाद जी ने बता दिया कि जीव का कृष्ण के साथ पांच रसों में संबंध है। इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो उस रस को ढूंढना है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस वास्तविक स्थिति, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन में आना है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या है मेरी वास्तविक स्थिति? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हटाओ जितनी उपाधियां हैं, हृदय के ऊपर बहुत मैला उठाओ, एक एक उपाधि को हटाओ, तत्परत्व निर्मलम, और निर्मल होकर फिर जाने मालूम चलेगा कि क्या मेरा कृष्ण के साथ संबंध है। तो जब तक हम उस स्थिति को नहीं मान पाएंगे कि मेरा कृष्ण के साथ साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस किस में, तब तक हमारा जीवन पूर्ण नहीं है, तब तक हम परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी मान लें, जैसे कि आजकल कहीं मेरे टीवी में पीछे दिखा रहे थे कि कोई एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं गोपी हूं, है ना, और गोपी भाव में आकर कुछ भी करना शुरू कर दे। ये मानना नहीं है, ये जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है। मानने से नहीं हो जाएगा कि मैं तो नंद बाबा जी हूं, मैं मधुमंगल हो गया, ऐसे मानने से हम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको जानना है, और ये स्वरूप प्राप्त करना प्रेम की स्थिति है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और अभी तो हमारा आदो श्रद्धा साधु संघ भी सही ढंग से नहीं हो रहा, भजन क्रिया भी सही ढंग से नहीं हो रही, तो कितना लंबा रास्ता हमें तैयार करना है। और ये होगी असली जिज्ञासा कि हमारा हर कार्य हमें कृष्ण की ओर ले जाए, हम देखें तो सही हम क्या कर रहे हैं, हमें जानना चाहिए। तो यहां पर बताया जा रहा है कि यदि तपस्या और अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होते हैं तो उसे अवश्य में सफलता प्राप्त होगी। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यदि तपस्या और अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ इंग्लिश में है परसिवियरेंस, कि हर स्थिति में हम लगे रहे, तो उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो कि हम प्रतिदिन तोते की तरह रटते हैं वो है कृष्ण प्रेम। हमें नहीं मालूम कृष्ण प्रेम क्या है, वो कैसे मिलेगा। अगर आपके जीवन का लक्ष्य ये है तो आपकी गतिविधियां, हम सबकी गतिविधियां तो उस लक्ष्य की तरफ हमें ले नहीं जाएंगे। जो हम, बुरा मत मानिए, अपने लिए बोल रहा हूं, जो हम टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं, घिसी पिटी जो भक्ति कर रहे हैं, उससे तो कृष्ण प्रेम मिलने वाला नहीं है। तो लक्ष्य क्या है, कार्य कहाँ है, जाना कहाँ चाहते हो, पहुंच कहाँ रहे हो, क्या है, तो इस ढंग से तो काम चलेगा नहीं। तो हमें श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि खूब तपस्या और अध्यवसाय, परसिवियरेंस के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, अवश्य में निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम इस भक्ति में जुड़ते हैं और हमने जिज्ञासा की कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, तो इसी जिज्ञासा को हमने बनाए रखना है, इसी जिज्ञासा को बनाए रखना है। प्रतिदिन प्रतिक्षण में देखना कि इस जिज्ञासा का मैं आगे और कहां मैंने कितनी प्रगति कर ली है। तो इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, इसके लिए बहुत उत्साह, निश्चय, जैसे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य की आवश्यकता है। अक्सर हम धैर्य खो बैठते हैं कि मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतना क्या क्या नहीं किया, इतनी किताबें बांट दी, इतने लोगों को भक्ति में जोड़ दिया, बड़े बड़े प्रवचन दे दिए, इतनी सेवा की, सब भक्तों की खूब सेवा करी, लेकिन अगर आपके मैं अंदर थर्मामीटर डालता हूं तो उतना ही काम, उतना ही क्रोध, उतना ही लोभ, उतनी प्रतिष्ठा की इच्छा जबकि बढ़ गई है, और क्या है ये प्रोसेस, ठीक है कि गलत है, क्या हो रहा है ये? तो आचार्यगण बताते हैं कि हमें किसी भी स्तर पर अपनी फिलॉसफी में सिद्धांत में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, यह बहुत बड़ा अनर्थ है। और बताया जा रहा है उत्साह निश्चय धैर्य, ये हमारे धैर्य की प्रतीक्षा परीक्षा है, तो धैर्य बना के रखना है। हमें फिर से आत्म अवलोकन करना है, फिर से आत्म अवलोकन करना है कि सेवा तो मैंने कर दी, लेकिन सेवा क्या मैंने सही चेतना में की, सही चेतना में सेवा की, कभी की कभी नहीं की। तो निश्चित रूप से मुझे अपने चेतना की क्वालिटी को गुणता को बढ़ाना है, अच्छी कॉन्शियसनेस में सेवा करने का प्रयास करना है, ताकि मैं इस जीवन के असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो धैर्य का अर्थ है पूर्ण रूप से शरणागति, दक्षस्थिति, विश्वास हो कि हर हालत में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अगर हम धैर्यवान नहीं हो रहे, इसका अर्थ है हमारी पूर्ण रूप से शरणागति नहीं है, हमारी शरणागति खोखली है, केवल वाक्य सेवा लिप सर्विस है और कोई शरणागति नहीं है। अगर वास्तविक शरणागति है तो धैर्य रहेगा, जो मर्जी आप मेरे से कर लो, आज सेवा पादतम पिनष्टुमा, आप मुझे गले लगा लो या रौंद के चले जाओ, मैं तो आपकी सेवा में ही लगा रहूंगा। तो धैर्य का अर्थ है कि शरणागति पूर्ण होनी चाहिए। धैर्य का अर्थ है कि हमारी जो सेवा होनी चाहिए बिल्कुल अहेतु की होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सेवा से कुछ फल देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम धैर्य खो बैठेंगे। कितने साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ। ये जो पद्धति है पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। पिछले अगले श्लोक के तात्पर्य में बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ढूंढते 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 बिल्कुल कमल की नाल की जड़ तक पहुंच गए, यानी कि गर्भोदकशायी विष्णु के इतने समीप आ गए, फिर भी अज्ञानता में रहे। क्योंकि जब तक कृपा नहीं होगी भगवान की, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो भक्ति योग पूर्ण रूपेण कृपा पर निर्भर है। तो हो सकता है हमें कितने भी साल हो जाए, कितने भी हमने तपस्या कर ली, अगर हमें विश्वास है कि भगवान हमें बचाएंगे, हमारा और कोई हेतु नहीं है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम नहीं चाहिए, सब भवतात भक्तिर अहेतु की त्वई, केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, इस लक्ष्य को ले चलेंगे तो हमेशा धैर्य बना रहेगा, हम कभी धैर्य को खोएंगे नहीं, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और हम कैसे परसिवरेंस अध्यवसाय बनाए रख सकते हैं कि हम हमेशा कृतज्ञ रहें। अधिकांशतः हम सोचते हैं कि भक्ति में आ गए हैं तो ये तो मेरा अधिकार है, हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करके हमारा मन चलता है कि भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना क्यों की, हम जैसे बद्ध जीवों की तुच्छ तुच्छ इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, जीव के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खाने की इच्छा के लिए भगवान को विस्तार करना पड़ा, महाविष्णु गर्भोदकशाय विष्णु क्षोरदकशाय विष्णु ब्रह्मा जी देवी देवता पूरा का पूरा ये तामझाम मेरी चॉकलेट की इच्छा खाने के लिए। अब देखिए कितने कृपालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं, एक छोटी सी इच्छा भी पूरी करने के लिए पूरे भौतिक ब्रह्मांड की रचना कर दी, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड। क्योंकि कोई अलग अलग चॉकलेट के फ्लेवर खाना चाहेगा, कोई मिल्क चॉकलेट, कोई ये चॉकलेट, तो सब फ्लेवर अलग अलग, तरह तरह से मैथुन करना चाहेगा, तरह तरह से इच्छाएं, सब जीवों की तरह तरह की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए असंख्यों ब्रह्मांडों की रचना कर दी। तो कितना कृतज्ञ होना चाहिए हमें। फिर कृतज्ञ होना चाहिए ब्रह्मा जी के प्रति, जो कि हमारे पितामह हैं, पितामहों के पितामहों के पितामह हैं। कितना संघर्ष किया इन्होंने, देखिए एक युग तक भटकते रहे बेचारे, एक युग तक, और ये हमारे आचार्य हैं, हम ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हैं, ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, कितनी मेहनत की, कितना श्रम किया, कितनी तपस्या की, 100 वर्षों तक ध्यान में लगे रहे। अगर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की रचना नहीं की होती तो हमें कैसे मालूम चलता। तो ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की और हमें कृतज्ञ होना चाहिए ब्रह्मा जी के प्रति। देखिए ब्रह्मा जी की स्थिति तो हम सबसे बहुत खराब थी, किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, कोई साधु संग नहीं था, कोई साधु संग नहीं। हम लोगों की स्थिति कितनी सरल है कि हमें साधु संग प्राप्त हो रहा है, हम वैष्णव सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी और उन्होंने कितना संघर्ष किया, और इसलिए हमें भी खूब तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम हमेशा कृतज्ञ रहें। इस आंदोलन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा है। तो हर वस्तु हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है, लेकिन यहां तो हम प्रसाद को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, उस पर भी अपना अधिकार समझते हैं। ये हर वस्तु जब तक हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे अपने आप धैर्य बना रहेगा, अपने आप शक्ति आएगी। जहां हमें सोचता कि ये मेरा अधिकार था कि मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर वहीं पे कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। जहां जो कुछ मिल गया पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण पर, वैष्णव कृपा पर निर्भर हूं, कुछ भी मिलेगा उससे मैं प्रसन्न रहूंगा। तो हमारा ये धैर्य बना रहेगा और हम एक लंबे समय तक सेवा करते रहेंगे, अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहेंगे। तो हमारे में धैर्य होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए और फिर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हम शुरू शुरू में आते हैं, जिज्ञासा करते हैं, मालूम चल गया, कुछ समय चले, उछले कूदे, धीरे धीरे धीरे, पहले इतना कूदते थे, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, उसके बाद हिलते डुलते हैं, फिर धीरे हिलना डुलना भी बंद और फिर आना भी बंद, फिर खत्म, धीरे 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 ग्रास नीचे गया, है ना। तो हम क्या है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी की सेंस ऑफ अर्जेंसी देखिए, ब्रह्मा जी ने जब तक इसका उत्तर नहीं मिला लगे रहे, जब तक इसका उत्तर नहीं मिला लगे रहे, पहले तो एक युग तक भटकते रहे और फिर भगवान ने उनके प्रयासों को देखा और भगवान ने चेत गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया कि तुम अब आप 100 वर्षों तक ध्यान लगाओ, और फिर भगवान ने दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया। तो हमारे अंदर भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। शिव जी भागवत में 10 स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं कि देव दत्तम एवं लब्ध्वा, देव दत्तम, ये देव कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है, देव दत्तम एवं लब्ध्वा, ना देव दत्तम इदम लब्ध्वा लोके अजित इंद्रिया। आपको मनुष्य शरीर मिला अजित इंद्रिया, उसके बाद अपने इंद्रियों पर संयम नहीं किया, ना औदुर्देव तद पादो, अगर भगवान आपके चरणों में उसने रति उत्पन्न नहीं की, सा शोचो ही आत्मवंचक, ऐसे जीव के ऊपर बहुत ही शोचीय, पिटिएबल, आत्मवंचक, अपने आप को वो धोखा दे रहा है। तो ये बहुत ही दुर्लभ देह हमें प्राप्त हुआ है, तो इस दुर्लभ देह का प्रयोग दुर्लभ वस्तु पाने के लिए करनी चाहिए। और जो कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ, तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लिया हमने कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, ये दुर्लभ नहीं है, ये तो आहार निद्रा भय मैथुन है। तो मनुष्य देह इसलिए नहीं मिला, ये बार बार हमें याद दिलाना चाहिए, दुर्लभ है, दुर्लभ। तो दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट कॉज को प्राप्त करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। और एक एक पल, यानी कि जब तक मंदिर में हूं तब तक नहीं, जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, नित्य का अर्थ है सर्वेत्र सदैव, हर स्थान पर, हर समय, हर समय हमें दास की चेतना में रहना चाहिए, बॉस की चेतना में नहीं। हम तो हर कार्य ईश्वर भाव से करते हैं, जब ईश्वर भाव से करते हैं, कीर्तन ईश्वर भाव से करते हैं, प्रसाद ईश्वर भाव से करते हैं, सोते ईश्वर भाव से हैं, भक्तों के साथ बातचीत ईश्वर भाव से करते हैं, तो कैसे ब्रह्म जिज्ञासा होगी, कैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा? बढ़ नहीं सकता। कृष्ण के प्रति आकर्षण तभी बढ़ेगा जब हम अपने आप को दास समझेंगे और इसी दास की चेतना में आने के लिए बारंबार प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि यह भक्त बड़ा सिंसियर है, तो सिंसियरिटी का मापदंड क्या है? सिंसियरिटी का मापदंड यह है कि यह व्यक्ति, ये भक्त अपने सब अनर्थों के साथ कितनी दृढ़ता से प्रयास कर रहा है कि वह विनम्र हो सके, स्वयं ऐसे प्रबंध कर रहा है कि मैं विनम्र हो सकूं, मैं किसी भी न किसी ढंग से दास बन सकूं, तब जाके ये जिज्ञासा पूरी होगी। अन्यथा बार बार हमें भटकना पड़ेगा और अपने जीवन के लक्ष्य से पतित हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए कि समय बहुत कम है। अगर हम शिला प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं, मुझे बता रहे थे भक्त में प्रभु कि जब जितामित प्रभु इस्कॉन में आने से पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते थे, तो जितामित प्रभु को लगता था कि शिला प्रभुपाद एक बहुत ही नवयुवक व्यक्ति है, क्योंकि प्रभुपाद जी के लेखों में इतना उत्साह है, प्रभुपाद जी के लेखों में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। एक मृत व्यक्ति के अंदर भी उत्साह डाल देंगे कि क्या कर रहे हो, उठो, प्रचार करो, जाओ भगवान को प्राप्त करो, मनुष्य देह बिल्कुल इसीलिए मिला है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी हमने प्राप्त करनी है। श्री प्रभुपाद अमेरिका में गए, हिप्पियों को प्रचार किया, वो हिप्पी जो कि कुछ किसी भी काम के नहीं थे, पूरी सोसाइटी से घर वालों के द्वारा रिजेक्टेड लॉट, कूड़े में पड़े हुए हैं, कभी उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, और ऐसे भक्तों के अंदर जब प्रभुपाद ने इंजेक्शन लगाया अर्जेंसी का, वही भक्त खड़े हुए और 15-15, 16-16 घंटे उन्होंने किताबों का वितरण किया। वो केवल मंदिर वापस आते थे मंगल आरती करने और जप करने और फिर भाग जाते थे। क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है और समय बहुत कम है। तो हम सबको ये सेंस ऑफ अर्जेंसी अपने अंदर लानी चाहिए। और चौथा, जब हम कृष्णा भाना भावित में आते हैं तो हमें अपने पूर्व पापों के लिए खूब पछताना चाहिए कि मैंने अभी तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की थी, कितना समय मैंने व्यर्थ गवाया। हमें अब मालूम चल जाना चाहिए कि भगवान की सृष्टि के पीछे उद्देश्य क्या है, मेरा उद्धार करने के लिए। ब्रह्मा जी ने इतने कष्ट सहे मेरा उद्धार करने के लिए, पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतने कष्ट सहे मेरे उद्धार करने के लिए, और मैं इतना मूर्ख था अपने भोग भावना से, मैंने कितने पाप किए, कितने पाप किए, और उन पापों का मैं पछतावा भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बता दिया गया है कि एक कृष्ण के नाम से आपके अनंत पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, अब मैं बड़ा आराम से हूं कि सारे पाप तो नष्ट हो गए हैं। नहीं, हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक नहीं पछताएंगे हम दोबारा से पाप करते रहेंगे। कि जीव के अंदर स्वतंत्रता है, आपको मालूम नहीं चला आपने पाप किए हैं, किए थे, और कई बार बुरा मानने की बात नहीं है, भक्त लोग भक्ति में आकर भी भक्त बनने से पहले की जो उनके लीलाएं थी उनको सुनाने में बड़ी रुचि रखते हैं कि ये जो देख रहे हो ये पब, यहां मैं दारू पिया करता था, वो पता नहीं क्या क्या किया था तब हमने, मैं सिगरेट पिया, इतनी सिगरेट पी जाया करता था मैं, ऐसे ऐसे मेरे अवैध संबंध थे। तो हमें बड़े गर्व से हम सुनाते हैं कि, क्योंकि आज के संसार में ऐसे व्यक्ति को स्मार्ट माना जाता है कि बहुत बढ़िया उन्नत व्यक्ति है, तो हम अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे और स्मार्टेस्ट अनुभव भी करते हैं। तो जब तक हम अपने पूर्व पापों के लिए पछतावा नहीं करेंगे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैंने कितना समय व्यर्थ गवाया, भगवान का उद्देश्य क्या था सृष्टि की रचना करने के लिए, और मैं क्या कर रहा था, पहले इतने पाप किए और अभी भी सही ढंग से नहीं कर रहा, तो पछतावा हमें होना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, हृदय से रिपेंट करना चाहिए। पछतावे की अग्नि में हमारे सारे पापों का फल जल जाते हैं। जेन्युइन पछतावा हमें होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब खोखलापन है, दिखावटी है सब कुछ। खूब पछतावा हमें होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि एक ब्रह्म जिज्ञासा है। अब हम बताया जाता है कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। केवल हरे का नाम, केवल हरे का नाम, केवल हरे का नाम, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो हम सोचते हैं माला तो जप रहा हूं, सबसे पहले मैं उठ जाता हूं, 3 बजे उठता हूं, मंगल आरती से पहले 16 माला फिनिश, और क्या कहिए मुझे, हरि नाम ले रहा हूं, उद्धार हो जाएगा, ब्रह्म जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं चैतन्य भागवत में कि इस कलयुग के 2 धर्म है, एक है हरि नाम और दूसरा क्या है, वैष्णव सेवा। और भागवतम के 3रे स्कंद के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, वो इस श्लोक को लिख रहे हैं, उसके बाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम का अर्थ है कि चैंटिंग द होली नेम एंड प्लीजिंग द वैष्णव आर द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम दिस कलयुग। भगवान के दिव्य नामों का जप और भक्तों को प्रसन्न करना दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों एक ही बात है। बिना वैष्णवों को प्रसन्न किए हमारा हरि नाम केवल शब्द नाम है। ऐसे में बहुत से भक्तों को जानता हूं जो कि घरों में रहते हैं, भक्तों से कोई संपर्क नहीं, भक्तों को गालियां देते हैं नहीं वो 16 माला कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, तपस्या कर रहे हैं लेकिन 16 माला करते हैं, सुबह जल्दी उठकर एक स्थान पर बैठकर कर रहे हैं लेकिन भक्तों को गालियां देते हैं, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो उनका जिज्ञासा पूरी हो जाएगी, निश्चित रूप से नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें एक युग तक भटकना नहीं पड़ा इस जन्म में, कम से कम हमें मालूम चल गया कि असली रास्ता क्या है, प्रभुपाद जी की शरण प्राप्त हो गई, दीक्षा भी हो गई, सब समस्त भक्तगण मिल गए जिनका भी एक ही उद्देश्य है कि ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। तो क्यों नहीं एकजुट होकर संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन का अर्थ है कोऑपरेशन, एक दूसरे की सेवा करते हुए हम हरि नाम का जप लें, तब हम सब मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और देखिए जब हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं हमारा तो उद्धार होगा ही होगा और हम पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। देखिए इससे इतनी शक्ति है, कैसे, आज से 520 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी जी ने यही प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि आमी मैं कौन हूं और मेरे को 3 ताप क्यों सता रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी और उन्हीं शिक्षाओं का संकलन उन्होंने शास्त्रों में किया, उन्हीं शास्त्रों को प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्हीं शिक्षाओं को हम पढ़ रहे हैं और जीवन के लक्ष्य को पहचान रहे हैं। 520 वर्ष पूर्व उन्होंने ये जिज्ञासा की और उसका हम लाभ उठा रहे हैं, और केवल दिल्ली में नहीं पूरे विश्व भर में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अगर हम सही ढंग से इस आध्यात्मिक पथ का पालन करेंगे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। और हम सही ढंग से जिज्ञासा नहीं कर रहे, हम भी नरकों में जाएंगे और पूरा संसार तो नरक में जा ही रहा है। तो इसलिए अब समय आ गया है, अथातु अब हम सिंसियर हो जाएं, अब हम हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी तीव्रता होनी चाहिए, अब हम कृतज्ञ हो जाएं भक्तों के प्रति, अब हम ध्यानपूर्वक जप करें, अब हम अच्छे ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करें। प्रतिदिन हम गुरु पूजा में बोलते हैं जय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। नहीं, प्रभुपाद केवल जय जय करने से प्रसन्न नहीं होंगे, प्रभुपाद कहेंगे कि मेरी आप जय करना चाहते हो तो देखो मैंने कितने कष्ट उठाए थे इन शास्त्रों को लिखने के लिए। शास्त्रों को पढ़ते नहीं और जय जय करके नाच के चले जाते हो। पहले शास्त्रों को तो पढ़ो, मेरे को तो समझो, ब्रह्म जिज्ञासा तभी पूरी होगी। रात रात भर प्रभुपाद जागे, जिस ढंग से ब्रह्मा जी ने इतने कष्ट उठाए, षड गोस्वामियों ने इतने कष्ट उठाए, श्रील प्रभुपाद ने कितने कष्ट उठाए, हमारे गुरु महाराज कितना कष्ट उठा रहे हैं, हम सब इन कष्टों से बिल्कुल अभिज्ञ होकर केवल अपने मन और अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लगे हुए हैं भक्तों के बीच में, झूठा दोगला जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिज्ञासा कैसे पूरी होगी? तो बताया जा रहा है कि अगर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो प्रभुपाद जी के शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़कर जीवन के लक्ष्य को समझना है। तब जब हम जय श्री प्रभुपाद कहेंगे तो प्रभुपाद उस जय को स्वीकार करेंगे। तो एक कृतज्ञता है, ये ग्रेटफुलनेस है। कृतज्ञता केवल थैंक यू करने से नहीं होगी कि थैंक यू प्रभु जी आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू का आने का अर्थ है कि आप कुछ करके भी दिखाओ, मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया, आप भी तो कुछ सेक्रीफाइस करो। नहीं जी थैंक यू, ये तो क्या बात हुई, ये तो कृतज्ञता नहीं हुई, थैंक यू नहीं, सॉरी प्रभु नहीं कर पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी, और अगले फिर थैंक यू आपने मुझे शिक्षा दी। लेकिन करो, पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ो, प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके हमें शास्त्र दिए हैं तो हम सबको पढ़ना चाहिए। तो कृपया करके मेरी बातों का बुरा ना माने, प्रयास कर रहा हूं अपने आप को समझाने का कि इतना सब कुछ हमें प्राप्त हो गया है, इतना सुंदर हमें आंदोलन, प्रभुपाद जी की हमें शरण मिल गई, हमें जीवन का लक्ष्य मालूम चल गया, फिर भी हम सही रास्ते पर नहीं चलते और भटक जाते हैं। यही सब कारण है, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, हम कृतज्ञ नहीं है, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, कोई तीव्रता नहीं है और कोई पछतावा नहीं है अपने कार्यों के लिए, और एक गैर जिम्मेदाराना जिसे कहते हैं कि कोई उत्तरदायित्व समझे बिना हम अपना जीवन जी रहे हैं, जो कि मनुष्य देह बहुत ही बड़े उत्तरदायित्व का जीवन है। तो इन सब को हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को, जो हमने शुरुआत की थी यहाँ पे, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम उसको प्राप्त करें, क्योंकि पता नहीं अगला जीवन कैसा होगा, अगला जीवन हमें भक्तों के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब है ना। तो इस विषय इतना बड़ा है क्योंकि एक भक्त के लिए इस संसार में क्या भी हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपने लक्ष्य पे, व्यवसायत्मिक बुद्धि, मेरा यही व्यवसाय है कि कृष्ण के प्रति मैं अपने आकर्षण को बढ़ाऊं। कृष्ण के प्रति आकर्षण का अर्थ है कृष्ण के प्रतिनिधियों के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाऊं, यानी कम से कम कोई एक ऐसा तो भक्त होना चाहिए जिसके साथ मेरे हृदय के संबंध हो, जिससे मैं प्रेम करता हूं। अगर किसी एक भक्त के साथ ही हमें प्रेम हो गया, कृष्ण हमें अपने भगवत धाम वापस ले जाएंगे। एक भक्त के साथ ही हमें प्रेम हो जाए और किसी एक भक्त के साथ भी हमें द्वेष रहा, तो हम इस भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे। आप हमें से कहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं, मेरा इनके साथ इनके साथ इनके साथ तो अच्छा संबंध है, वो जो बैठे हैं ना बनती नहीं है, थोड़ा द्वेष चल रहा है, कोई बात नहीं। नहीं, चावल के एक दाने से, बोरी का एक दाने चावल निकाला आपने, एक दाना भी आपको ठीक नहीं लगा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि पूरी बोरी को रिजेक्ट कर दिया, सैंपल को रिजेक्ट कर दिया, सैंपल को रिजेक्ट किया, पूरा माल रिजेक्ट हो गया। तो एक भक्त के साथ भी हमारे मतभेद है, कटु संबंध है, तो हम इस भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे। तो जीवन का लक्ष्य है अथातु ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कृष्ण प्रेम, यानी कि भक्तों के प्रति प्रेम है ना। इस जिज्ञासा को, ये श्रेय, ये उत्तम जिज्ञासा है, और इसी उत्तम जिज्ञासा को प्राप्त करने के लिए हमने गुरु की शरण ली है। तस्मात् गुरुं प्रवृत्तेक जिज्ञासु श्रेय उत्तम। कृष्ण का अर्थ है आनंद, तो उत्तम आनंद की जिज्ञासा करते हुए हमने गुरु की शरण ली है, हमने दीक्षा ली है इस उत्तम आनंद को प्राप्त करने के लिए। अगर दीक्षा लेने के बाद भी हमें उत्तम आनंद नहीं मिल रहा तो गलती कर रहे हैं हम, कुछ गलती कर रहे हैं। और गलती यही है कि वैष्णव के संबंध स्थापित किए बिना केवल चैंटिंग कर रहे हैं, जो कि आधार है वैष्णव संबंध। वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया कलयुग का धर्म है, ब्रह्मा जी के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर ब्रह्मा जी के पास साधु संघ होता तो निश्चित रूप से पहले वो साधु संघ करते, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली थे। हम लोग ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास साधु संघ है, तो उसका हम सही ढंग से सीखें कैसे साधुओं का संग करना है, कैसे भक्तों की सेवा करनी है, कैसे भक्तों से प्रेम विकसित करना है, तो हम कृष्ण के समीप जाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अन्यथा ये मृत्यु कभी भी आ सकती है और हम अगला जन्म सही अवस्थाओं में, सही परिस्थिति में मिलता है नहीं मिलता कोई गारंटी नहीं है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो? नहीं, देवता लोगों के लिए भजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ भोग की, जो उनको भोग प्राप्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत अधिक सुख जब प्राप्त हो जाता है तो अपने मार्ग से वो भ्रष्ट हो जाते हैं।
हरे कृष्ण। तो जी आपने बोला जैसे ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की, तो उनकी जीवन की आयु भी 100 वर्ष है, तो फिर 100 वर्ष तपस्या कैसे की?
तो भगवान के द्वारा विशेष कृपा है, मिलती है उनको, भगवान के दिए हुए ये पूरे प्रबंध है कि भगवान ने उनको 100 वर्ष दिए ताकि वो तपस्या कर सकें और फिर उनको ज्ञान मिला जैसे वो समझ सकें।
जो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष जो तपस्या की वो दिव्य वर्ष,
दिव्य वर्ष,
तो 100 दिव्य वर्ष यानी देवताओं के 100 वर्ष,
बिल्कुल
ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, तो फिर उनकी ही आयु होगी ना पूरी।
इसमें शायद अगले श्लोक के तात्पर्य में लिखा होगा उसने,
लेकिन ऐसे देवताओं के जो 100 वर्ष हैं तो वो तो हमारे हिसाब से 36,000 साल होता है, तो देवताओं के अगर 100 वर्ष किया है तो ब्रह्मा जी का तो जो है एक सेकेंड यहाँ के 1,00,000 साल के बराबर होता है, तो उस हिसाब से उनकी आयु का बहुत थोड़ा ही हिस्सा था जो देवताओं के 100 वर्ष हैं। अगर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं फिर तो ब्रह्मा जी की आयु ही समाप्त हो जाएगी ना उसमें।
इसमें 22वें श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया। इसलिए कालेन सो अज, तो इसको हमें आगे भी बताया है कि किस ढंग से उनका 100 वर्ष की गणना की गई है।
अच्छा, दूसरे विषय पर थोड़ा, इसमें जो है जो ब्रह्मा जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि को अहम, कि मैं कौन हूं, और क्यों जिज्ञासा कर रहे हैं? क्योंकि उनको अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अकेले हैं, हाँ, तो इसलिए वो जो है बहुत परेशान है। और जो कैवल्य मोक्ष पाना चाहते हैं, जो कैवल्य मोक्ष पाना चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं अपने को ही जानूं, केवल मैं ही केवल हूं और कोई नहीं है, है ना? तो वो ये कहते हैं कि मैं हूं और कोई नहीं है, अपने सिवा और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये कैवल्य मोक्ष है ना। तो वास्तव में वो नरक के समान है ही है, कैवल्य हम नरक आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बिल्कुल अकेले थे ही। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा कि अकेले में कहाँ आनंद आता है, आप अकेले रहोगे तो कितनी देर तक आप जो है मतलब रह सकते हो अकेले? मान लो आपको कोई कष्ट नहीं है, तो ब्रह्मा जी को भी कोई कष्ट नहीं था वैसे, लेकिन अकेले रहना ही अपने आप में नरक के समान है ना। तो हमें जो है वेराइटीज चाहिए, विविधता चाहिए, और वो जो विविधता है वो भगवान के धाम में है, और भगवान भी अकेले नहीं होते हैं, अपने भक्तों के संग रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं या बलराम जी के साथ रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए तो ज़्यादातर नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते थे, तो भगवान भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जीव फिर जो है कैसे अकेले रह सकता है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी ब्रह्मा जी के सामने। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्मा जी को भक्तों का संग नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो बहुत ही कष्ट में थे। और हम लोगों को जो भक्तों का संग मिलता है तो बहुत बड़ी सुविधा है, और उसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो वास्तव में जो है वो कैवल्य मोक्ष जो पाना चाहते हैं तो उनका यही विचार होता है कि कैवल्य मोक्ष में क्या होता है, बस मैं अपने को ही केवल जानूं कि मैं हूँ, अपने को अनुभव करूँ कि मेरा अस्तित्व है और कुछ नहीं है ना। तो ठीक है आप जन्म मरण के कष्ट से छूट गए, लेकिन कब तक ऐसे आप रहेंगे कि आप कष्ट में नहीं हैं लेकिन आप जो है ऐसे आप मतलब रहते हैं जहाँ कोई रस नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, तो कब तक ऐसे रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण एक नित्य दास, तो कृष्ण का नित्य दास। और वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि एतत् कुतो वाब्जम अनन्त अप्सु, कि पाने के अतिरिक्त कुछ और आधार होना चाहिए इस कमल का। तो ये साधारण बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति विचार कर सकता है कि पानी से अगर कमल निकला है तो पानी से ही तो नहीं निकल सकता है कमल, ये पानी तो जो है द्रव है और ये कमल है ठोस, तो कमल का जो आधार है वो भी कोई ठोस वस्तु होनी चाहिए पानी के अंदर, खाली पानी से कमल नहीं हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं अनन्यत, कि पानी के अतिरिक्त है कुछ और इसका है, अधस्तात अधिष्ठितम, तो नीचे से कोई इसका आधार है, तो कोई आधार है, लेकिन शायद वो सोच रहे हैं कि जड़ है या चेतन है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक सोचते हैं कि आधार या कारण जो परम कारण है वो जड़ है, तो उनका ये कहना है कि जड़ है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बड़ा अच्छा पिछले शुक्रवार को प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था, तो उन्होंने बताया है कि जो परम कारण है वो चेतन होना चाहिए, जड़ नहीं हो सकता है ना। तो ब्रह्मा जी वो सोच रहे हैं कि कोई ठोस वस्तु तो है जिसका आकार है, कि कमल के फूल का आकार है, तो उसका आधार भी जो है कभी कोई आकार तो होना चाहिए, पानी खाली पानी से जो है ये कोई आकार तो नहीं बन सकता है, तो आकार तो होना चाहिए, लेकिन जड़ है या चेतन है, तो इस कारण से भी जो है अपने प्रयास से जड़ वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आजकल के वैज्ञानिक लोग जो है जो प्रयास करते हैं तो अपने प्रयोगों के द्वारा वो जानने का प्रयास करते हैं, अपने नियंत्रण के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो परम कारण है वो जड़ वस्तु है, कोई पदार्थ है। लेकिन प्रभु जी ने जो बताया कि फिर आपको कृपा पर जो है आश्रित रहना पड़ेगा, तो जड़ नहीं है चेतन है। तो जब ब्रह्मा जी प्रयास करते करते हार गए तो फिर उन्होंने विचार किया कि कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई चेतन है, कोई चेतन है और वो मुझ पर कृपा करे। तो फिर तप तप ये दो बार शब्द हुआ पानी में, तप तप, तो तब जो है उनको दिशा निर्देश मिला, आज्ञा मिली कि तप करो, तब ब्रह्मा जी ने तप किया। जब तक जड़ समझते थे कि भाई मैं अपने प्रयास से जान लूंगा, जड़ वस्तु है तो जड़ वस्तु में अपना तो कोई प्रयास है नहीं, मैं अपने प्रयास से उसको जान लूंगा, लेकिन चेतन वस्तु है और अपने से सुपीरियर है तो आप अपने प्रयास से जान नहीं सकते जब तक कि वो कृपा ना करें। हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न है?
Hare Krishna Guruji, first of all I would like to thank you for a nice lecture and actually you raised a point that आपने एक बात कही थी कि हमें सिर्फ मंदिर में ही नहीं परंतु बाहर भी वो सेवक वाली भावना बना के रखनी चाहिए, बट ये हम देखते हैं कि जब हम मंदिर में नहीं बाहर होते हैं तो डैमेज हो चुका होता है, ईगो काम कर चुकी होती है और उसके बाद रियलाइज होता है कि अरे ये तो हो गया, एंड मतलब उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए।
देखिए इनका प्रश्न ये है कि मंदिर में, जब मैंने बोला था कि मंदिर में ही केवल दास बन के नहीं रहना, बाहर भी दास बन के रहना है, मंदिर से बाहर भी जाए, तो इनका अर्थ यह है कि प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं तब तक हमारा अहंकार वश, हम जो कार्य करते हैं अपने आप को बॉस समझते हैं, तो हम दास की चेतना में नहीं रह पाते, यही प्रश्न है ना आपको। तो देखिए, दास की चेतना में रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें बाहरी रूप से विनम्र रहना पड़ेगा, कि हम नौकरी करने जाएं, हमारा बॉस जो भी हमें डांटे फटकारे हमारे अत्याचार करे हम चुपचाप सहते रहे, जीवे स्वरूप हो गए। कृष्ण ने ते दास बोला है, कोई भौतिकवादी व्यक्ति का दास बनने को नहीं बोला हमें। तो कृष्ण का दास बन के रहना है, भक्तों का दास बन के रहना है, गुरु का दास बन के रहना है। तो हम बाहर में जाएं तो हमें सब कुछ मैनेज करना है, एक जो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह अपना जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको निभाएं, लेकिन पूर्ण रूप से जानते हुए कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूं इसका पूरा का पूरा कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण को अर्पण करना है, गुरु को अर्पण करना है। बस इसका जो भी फल मिलेगा, जो ये मैं कार्य कर रहा हूं, इसी ना किसी ढंग से गुरु और कृष्ण को मैं प्रसन्न कर सकूं इस कार्य से, इस चेतना में रहना है। तो इस चेतना में रहेंगे तो अपने भौतिक आप कर्तव्यों को बड़े अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे अनासक्त होकर। हाँ, भक्तों के सामने बिल्ली की तरह, लाइक अ लैम, मेमने की तरह, और बाहर शेर की तरह। तो वहां पे अर्जुन ने तीर चलाए, अर्जुन ने मारा शेर की तरह। अर्जुन वास्तव में तीर चला के त्रिनादि भी सुनिश्चय हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो बोले नहीं, मैं त्रिनादि भी सुनिश्चय हूं, मैं कैसे तीर चलाऊंगा, बस मैं, वो तो पहले हो रहा था कि मैं चला जाता हूँ जंगल में। तो बाहरी दिशा लगा, अर्जुन कितना विनम्र है, देखो सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना चाहते हैं। असली विनम्रता है गुरु की आज्ञा, एक शेर बनो, मारो इनको, तब वो असली ढंग से विनम्र होगा। तो हम बाहर जाते हैं तो दिखा ऊपरी ढंग से हो सकते हैं हमारा व्यवहार, एक हम मैनेजर हैं कहीं पे, कहीं बिजनेसमैन है, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ये कार्य मैं अपने लिए नहीं कर रहा, अपने नित्यति अपने परिवार की नित्यति के लिए नहीं है, ये पूर्ण रूप से गुरु की प्रसन्नता के लिए है। तो उसका जो फल है केवल गुरु को मिलेगा, उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये दासत्व की भावना, यानी और साथ में वहां जाके भूल नहीं जाना कि मैं वास्तव में, ये तो एक दिखावा है, एक ड्रामा है, ये ड्रामा कर रहा हूं मैं, 7-8 घंटे जो करने हैं, फिर भाग के मुझे भक्तों के संग में जाना चाहिए वापस, वो असली घर है, वो असली स्थिति है, ये तो मैं ड्रामा कर रहा हूं। तो ड्रामे की तरह निकाल दो उसको, बस किसी ढंग का।
मुझे आपने इसे बताया कि भक्ति में कृपा डिपेंडेंट है, कृपा कैसे प्राप्त होती है, सेवा करने के बाद भी अगर नहीं होती तो कैसे होती है
कृपा, कैसे प्राप्त होती है? हमारा हर कार्य जो हम अभी हम साधना भक्ति भी नहीं कर रहे, अभी हम साधना क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिससे हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें। छोटे छोटे कार्य पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से हम वैष्णव एटिकेट्स का पालन करें, जो हमें वरिष्ठ भक्त हमें आज्ञा देते हैं उसको तुरंत पालन करें, हमारा भक्तों के प्रति कितनी शरणागति है ये मालूम चल जाएगा। प्रैक्टिकल आप कितने शरणागत हो, हम लोग कितने शरणागत हैं कि जब आज्ञा मिलती है, निर्देश मिलता है, और जब हम इसका पालन करते हैं, कितना टाइम गैप है। गुरु महाराज ने कोई आज्ञा दी, वो लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि बस करेंगे, अभी समय नहीं है, देख लूंगा, करूंगा, नहीं। हमारे में तीव्रता होनी चाहिए कि ये आज्ञा मिली है, इसको मैं तुरंत पूरा करूं, लग जाऊं पूरा उसमें, तो बस, तो कृपा क्यों नहीं मिलेगी? एक कार्य दिया तुरंत कर दिया, दूसरी सेवा मिली तुरंत कर दिया, क्योंकि अगर एक ही सेवा मिल गई उसको सही ढंग से नहीं करें, दूसरी सेवा कैसे मिलेगी, हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, है ना? तो कृपा की याचना करने, अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से भगवान की करुणा शक्ति राधा रानी जी को आकर्षित करना अपने पति। तो राधा रानी जी रिकमेंड करेंगे, दो इसको कृपा, क्यों नहीं दे रहे, करुणाम करुणमय करुणा भरी दे। तो राधा रानी की कृपा गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से फ्लो करके आएगी। और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन तो कृपा का ही आंदोलन है, बांट रहे हैं कृपा, लेकिन अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे खुद ही फिर हम, तो जो हमें आज्ञा मिलती है उसको अपना जीवन समझते हुए उसको तुरंत पूरा करें, निश्चित रूप से कृपा मिलेगी। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे
सुखनी।